बट आई एम मोर कंसर्न अबाउट लाइक यू हैव योर ऑफिस इन अंबाला कैंट.
हाँ जी.
आई हैव माय वन ऑफ ब्रांच इन अंबाला सिटी.
अच्छा.
सी आई वांट someone who can help me in managing that branch, वो अंबाला सिटी वाली ब्रांच.
ठीक है ठीक है.
Move there daily or you can say not even a once a week also. So it's quite difficult for me to go there very frequently.
हाँ मैम, एक्चुअली हमारा जो फ्रेमवर्क है ना, ये ट्यूशन टीचर्स के सपोर्ट के लिए ही बना हुआ है. तो जैसे आप एक एकेडमी रन कर रहे हैं, तो जैसे अगर आपका अंबाला ब्रांच भी आप रन कर रहे हैं, तो आपको जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि आप नहीं ज़्यादा आप जा पाते, तो ये जो फ्रेमवर्क है ये इस तरह से है कि अगर आप इसको इंस्टॉल करवा लेते हैं, इसको यूज़ करने लगते हैं, तो आपकी अकेडमी की डे टू डे की पूरी वर्किंग आपके आईडी पे रिफ्लेक्ट होगी. आप किसी भी टाइमिंग एनी टाइम इन द डे आप एक बार ओपन करके देख सकते हैं कि जो अंबाला के ब्रांच के जो बैचेस हैं उनमें क्या चल रहा है. मतलब क्या होता है कि मैम, जैसे देखो आप इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं तो आपने टीचर्स भी हायर किए हुए होंगे, ठीक है. हेलो.
हाँ
अच्छा, तो जैसे टीचर्स भी आपने हायर किए होंगे और अलग अलग बैचेस हैं जिनको पढ़ा रहे होते हैं, तो हम एज ए ओनर कई बार ये नहीं पता कर पाते हैं कि क्या हमारे स्टाफ की परफॉर्मेंस कैसी रही या बैच में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही. इसके लिए हम जनरली क्या करते हैं कि कुछ दिन बाद कोई टेस्ट कंडक्ट करते हैं. टेस्ट के रिजल्ट्स जब तक आते हैं तब तक अगर सोचा जाए तो काफ़ी दिन निकल चुके होते हैं. मतलब जैसे सपोज आज आपने एक चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, आप इसको 5-6 डेज उस चैप्टर को पढ़ा के या कुछ एक पार्ट को पढ़ा के फिर आप एक टेस्ट प्लान कर लेते हैं, आप एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं. तो उस टेस्ट को अगर हम, पहली बात तो वो पेपर ही हम मैनुअली बनाते हैं, उसमें भी टाइम लगता है, ठीक है. उसके बाद हम उस पेपर को कंडक्ट करके फिर हमें उसको देखना है कि क्या रहा परफॉर्मेंस. फिर उसके बेस पे आपको एक एनालिसिस भी चाहिए कि कौन सा एरिया बच्चों का वीक रहा, राइट. फिर उस वीक एरिया पे आप वर्क करोगे तब जाके वो चैप्टर बच्चों का रेडी हो पाएगा. लेकिन ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. तो इसमें जनरली होता क्या है कि जैसे हम टीचर पढ़ा रहा होता है और बच्चे भी सुन रहे हैं और दे आर जस्ट सेइंग कि हाँ समझ आया है, तो जब वो चैप्टर का टेस्ट होता है तो समझ आते हैं कि अच्छा कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस बन गए, कुछ एवरेज रह गए और कुछ बिलो एवरेज भी रह जाते हैं, राइट. तो क्या होता है कि आपकी उसी गैप उसी क्लास में कई तरह के बच्चे आ गए. मतलब आप कुछ बैच में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी रेडी हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी यही चैप्टर रेडी नहीं है, और हमें पूरे बैच को एक साथ लेके चलना होता है. तो एक काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक अकेडमी के लिए सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना. बट हमारा सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आप इसको डेली बेसिस पे बच्चों की टेस्टिंग कर सकते हो. इसमें क्या होता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो आपको सिर्फ अपना मतलब कुछ भी चेंज नहीं करना है, जिस मेथड से आप पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाएंगे. लेकिन उसमें पढ़ाने के बाद जस्ट आपका टीचर इसमें मार्क कर देगा कि उसने आज क्लास में क्या क्या पढ़ाया है. जैसे हम पूरे CBSE को हैंडल कर रहे हैं तो CBSE के हमने सारे चैप्टर्स को मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है, फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जिसको हम कॉन्सेप्ट्स कहते हैं. तो अब क्या होता है कि जो जो पार्ट टीचर ने पढ़ा दिया है वो मार्क कर देगा कि मैंने ये पढ़ाया है. हमारा फ्रेमवर्क ही स्टूडेंट्स के आईडी में पेपर जनरेट कर देगा और वही पेपर आपको भी दिखेगा, टीचर को भी दिखेगा, क्वेश्चंस भी दिखेंगे, उनके राइट आंसर्स भी होंगे. इट इज़ जस्ट एन MCQ. तो उससे क्या होता है कि जब हम अपने पेरेंट्स को इतना अवेयर कर सकते हैं कि जिस टाइम भी आपके पास 5 मिनट टाइम होगा इसको बिठाना, ये एक पेपर अटैम्प्ट कर देगा बच्चा. बच्चे ने पेपर अटैम्प्ट किया और उस अटेम्प्टेशन की सबमिशन से आपको पता चल जाएगा कि उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या रहे और मॉडरेट एरियाज क्या रहे और वीक एरिया क्या रहे. सेकेंडली आप पूरे बैच को देख सकते हैं कि इस बैच में सपोज 20 स्टूडेंट्स हैं तो 5 ने अटेम्प्ट नहीं किया, ये भी हाईलाइट हो जाएगा आपके पास. जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही वो भी आ गई उसमें. मतलब अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आपको नज़र आता है कि मोस्ट ऑफ द क्लास का वीक रहा है तो उसको आप नेक्स्ट क्लास में फिर कवर कर सकते हो, ठीक है ना. तो जब डेली बेसिस पे होगा तो आपको ये वाली सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं कि आपके बैच में कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे परफॉर्मर्स बन रहे हैं और कुछ एवरेज रह रहे हैं और कुछ बिलो एवरेज रह रहे हैं. मान लिया कोई 2 बच्चे हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई डे 1 पे, अगर हम उनको 10-15 मिनट्स आफ्टर दी क्लास भी अगर एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे तो भी वो लेवल पे आ जाएंगे, और इसका एक सेकेंड भी ऑप्शन है कि जैसे एक बच्चा जब पढ़ रहा होता है, अगर उसको पता हो मेरा टेस्ट होना है और टेस्ट के बेस पे मेरा एनालिसिस आएगा, तो बच्चा भी पूरा इंटरेस्ट लेके पढ़ता है। ये जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम कहते हैं कल टेस्ट है, तो उस दिन बच्चा पढ़ने बैठता है, जी कल मेरा पेपर है। अगर उसको पता है ये मेरा पेपर रोज होना है, तो ऑब्वियसली जो क्लास में पढ़ेगा उसी का ही पूरा इंटरेस्ट लेके चलेगा। और ये सारे करने में आपको कुछ भी एफर्ट नहीं डालना पड़ा, क्योंकि फ्रेमवर्क ने पेपर भी जनरेट कर दिया, फ्रेमवर्क ने आपको बता भी दिया वीक एरिया कहाँ कहाँ रहा, और आपको उस टीचर की परफॉर्मेंस भी दिखेगी कि अगर सपोज टीचर ने कॉन्सेप्ट से 5 पढ़ाए और 5 के 5 ही वीक रह गए, तो आप एनालाइज कर सकते हो कि कहीं कुछ गैप रहा है, ठीक है ना। तो उसमें जब टीचर भी अवेयर होता है कि आपको एज ए पर्सन पता चल जाएगा कि मेरे वीक एरियाज क्या रहे, वो भी अपना 100% एफर्ट डालेगा, बच्चे भी डालेंगे, और जब दोनों ही एफर्ट डाल देंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स तो आ ही जाएंगे। और एक एकेडमी की, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसकी ग्रोथ उसकी एकेडमिक एक्सलेंस पे ही डिपेंड करती है। जब आपकी एकेडमी में जो है बच्चों की नॉलेज अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, तो ग्रोथ तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अपने आप ही हो जाएगी। और इस सारे प्रोसेस में देखो आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि पेपर भी सॉफ्टवेयर ने जनरेट कर दिया और एनालिसिस और रिपोर्ट सारी सॉफ्टवेयर ने दी। फिर इसमें जो सब्जेक्टिव पेपर हैं वो भी अवेलेबल है, जैसे आपने मॉड्यूल के बाद एक सब्जेक्टिव पेपर प्लान किया, वो भी बना हुआ मिलेगा आपको। उसमें हर तरह के क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, जैसे कि हमारे फाइनल पेपर होता है। और अब इसकी परफॉर्मेंस भी आप सॉफ्टवेयर से ट्रैक कर सकते हो, आप जो उसमें पेपर टीचर ने चेक करके अपलोड किया, आप उसको भी देख सकते हो कि किस टीचर के पास पेपर रुका हुआ है, किसने चेक नहीं किया, किसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो सारी की सारी रिपोर्टिंग आपके पास सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होगी। तो जैसे अब आपके अम्बाला ब्रांच है, उसमें अगर ये सारी वर्किंग हो रही होगी और आप इसको देख सकते हो, तो आप जैसे फोन कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हो कि आपके बैच में ये चल रहा है, ये आपने क्यों ध्यान से नहीं कराया, तो उतने में ही सारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी, राइट। इसी के साथ साथ हमने क्या किया, वो एक जनरली जो अकेडमीज को इशू आता है कि उनकी फीस मैनेजमेंट काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बन जाता है, क्योंकि अब अगर बच्चे ज़्यादा हैं और हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम उस टाइम बच्चे आए थोड़ी देर के लिए, अगर उस टाइम हम फीस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे, अगर हम पढ़ा नहीं पाएंगे तो रिजल्ट भी नहीं आएंगे। और साथ में कई बार लोग भी ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई आप हमें फ़ीस के लिए क्यों कर रहे हैं, तो हमने ये जो आईडीज़ हैं इनको फ़ीस के साथ लिंक किया हुआ है। मतलब आप जिस दिन आपने एडमिशन हुई उस टाइम पे बच्चे का आपने डाल दिया कि इस बच्चे की सपोज 10th को फ़ीस आनी चाहिए और इतनी फ़ीस आनी चाहिए, तो वो 10th को उस डेट को एक बच्चे के पास भी SMS आ जाएगा, उसके फ्रेमवर्क जैसे ही वो आईडी ओपन करेगा तो मैसेज पॉपअप होगा जिसमें उसको पता चलेगा कि मेरी फ़ीस ड्यू हो गई है। और जैसे स्टूडेंट का आईडी बनता है साथ ही पेरेंट का भी बन जाएगा, तो पेरेंट भी आईडी ओपन करके देख सकता है कि अच्छा, जैसे वो ओपन करेगा तो उसको भी दिख जाएगा फीस ड्यू है, तो ऑब्वियसली वो कंप्लीट कर देगा फीस, ठीक है ना। और सेकेंडली जब हम इसको इस तरह से रन करते हैं, तो इसमें जब बच्चे आपके पास लिस्ट आ रही है, आपको भी दिख रहा है कि किस किस की फीस ड्यू है, ठीक है। उसके बाद आप इसी पे जैसे टीचर ने क्लास में अटेंडेंस ली, जिस बच्चे की फीस ड्यू हो जाएगी उसके नाम हाईलाइट होके आने लग जाएगा, सपोज ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ हुआ है नाम, तो आप टीचर की अटेंडेंस में एकदम दिख रहा है कि अच्छा ये 3 बच्चे क्लास में बैठे हैं जिनकी फीस अभी ड्यू है, तो टीचर ही एक रिमाइंडर उनको क्लास में दे सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हमने इसी आईडी को ऐसे किया हुआ है कि आपने सपोज 5 डेज का ग्रेस पीरियड दिया और 5 डेज के बाद वो आईडी लॉक हो जाएगा, मतलब अगर 5 डेज में फीस नहीं आई तो वो आईडी लॉक हो गया। आईडी लॉक होने से बच्चा पेपर भी नहीं दे पाएगा, लॉगिन नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली वो आपकी फ़ीस जो है वो डिपॉजिट करा देंगे, तो आपकी जो ऑटोमेटेड हो जाएगी पूरी फ़ीस, मतलब इंस्टेड ऑफ कि आप एक एक को बोलें, बच्चे अपने आप ही फ़ीस डिपॉजिट करा देंगे। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन की मैं ये मानती हूँ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना तो तभी होगी ना जब फीस सारी टाइम पे आ जाएगी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि क्लास में बच्चे तो पढ़ रहे हैं, अकेडमी में आ रहे हैं, किसी ने नहीं दी दी वो सारा मॉनिटर करना अगर हम मैनुअली करने लगते हैं, एक तो बहुत लेंदी काम है, उसके लिए आप किसी अलग पर्सन को हायर कर रहे हो, वो सारा काम करके दे रहे हो, और फिर जो काम मैनुअल होता है वो कभी भी एफिशिएंट नहीं हो पाता, किसी दिन वो आया नहीं, किसी दिन बोलना भूल गया, ऐसे करते करते हमारे कई ऐसे पार्टनर्स हैं जो बताते हैं कि 2-2, 3-3 महीने की फ़ीस ड्यू हो जाती है, ठीक है ना। अब इसमें वो वाला पार्ट भी आपका फ़ीस मैनेजमेंट भी हो गई, और प्लस जैसे ही टीचर क्लास ले रही है वो अटेंडेंस मार्क करेगी, तो जो बच्चा एबसेंट होगा उसके लिए वो जैसे ही एबसेंट मार्क करेगी उस पेरेंट के पास एक मैसेज पहुंच जाएगा कि आपके बच्चा आज आया नहीं है, तो आप सोचो आपका कितना काम कम हो गया, फीस मैनेजमेंट सारी आ गई, कोर्स की पूरी प्रोग्रेस आ रही है, किस टॉपिक को जितनी बार भी टीचर उस कॉन्सेप्ट को क्लास में पढ़ाएगा, जितनी बार वो मार्क करेगा उतनी बार नए क्वेश्चंस बच्चे के आईडी में जाएंगे पेपर के तौर पे, आपके पास पूरा एक मार्क बन जाएगा कि किस किस दिन क्या क्या पढ़ाया गया था, कितना प्रोग्रेस चल रही है, क्या पेंडिंग है क्रॉस प्रोग्रेस में, मतलब कितना हो गया सिलेबस, कितना पेंडिंग है, ये भी आप उसमें कर सकते हो। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी इसमें फीचर्स हैं जिनसे कि क्या होता है कि बच्चों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। और क्योंकि अगर टाइमली मैसेजेस पेरेंट के पास जा रहे हैं, पेरेंट का अपना आइडिया है, कभी भी उसको ओपन करके वो उसमें देख सकते हैं, तो पूरा पेरेंट भी अवेयर रहेगा कि क्या क्या चल रहा है क्लास में। ठीक है। और फिर पीटीएम का भी मॉड्यूल है कि जिस दिन आप आज डिसाइड करते हैं कि जी पीटीएम होनी चाहिए, आप उसमें मार्क कर देंगे कि आज के टाइम में मैं अवेलेबल हूँ, तो उस टाइम पेरेंट्स अपना टाइम बुक करा सकते हैं। बुक करा के कंफर्मेशन कॉल के बाद वो आने लग जाएंगे, आ जाएंगे पीटीएम के लिए। तो अब जब पीटीएम होगी तो वो बहुत इफेक्टिव होगी, क्योंकि रिपोर्ट आपके पास है पूरी। ठीक है ना। क्या क्या वीक एरियाज थे, कब कब बच्चा नहीं आया, क्या क्या, वो सारी आपको कुछ भी मैनुअल नहीं बनाना पड़ रहा, सारी रिपोर्ट कार्ड सॉफ्टवेयर जनरेट करके दे रहा है, और वो रिपोर्ट पेरेंट के पास अवेलेबल है, वो कभी भी देख सकता है। ठीक है ना। तो अब जब इस तरह से, क्योंकि देखो कोई भी बच्चे की ग्रोथ के लिए तीनों को स्ट्रांग होना पड़ेगा, टीचर को भी, स्टूडेंट को भी और पेरेंट को भी। जब ये पूरी कम्युनिकेशन एक लूप में चलेगी तो ऑब्वियसली ग्रोथ हो जाएगी, एकेडमिक ग्रोथ। एकेडमिक ग्रोथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी लाती है। तो इस तरह का फ्रेमवर्क है जिसको आप यूज करके, आप जैसे आप बता रहे हैं कि आपके अम्बाला की भी ब्रांच है और यहाँ की भी, आप जीरकपुर में है आप अदरवाइज? हाँ। तो दोनों ब्रांचेस को, और इन साइड में तो ये कहूँगी जब आप दो कर रहे हैं तो अब इसके अलावा और भी कई ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, क्योंकि सारी मैनेजमेंट जब आपको नहीं करनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर करके देगा, तो आप बहुत इजीली अपने दूसरे काम पे फोकस कर पाओगे। क्योंकि देखो फीस भी आ गई, अटेंडेंस भी हो गई, एग्जामिनेशन हो गया पूरा सारा कुछ, और इसमें हमने अराउंड 7 लाख ऑफ क्वेश्चन हैं जो डले हुए हैं, और इनकी प्रॉपर मैपिंग हुई हुई है कि कौन से सिंपल क्वेश्चन हैं, कौन से हार्ड हैं, पूरा एनालिसिस बताता है। पेपर के बाद जो एनालिसिस होगा उसमें पता चलेगा कि सिंपल क्वेश्चन गलत कर रहा है, ये हार्ड कर रहा है, या ये वेरी हार्ड क्वेश्चन भी गलत कर रहा है, क्या हो रहा है। और बच्चे इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आगे जाके अपने आप ही रिजल्ट्स दिखा देंगे। जैसे फर्दर आप देखो, एक 10th तक पढ़े, 11th 12th में एंट्रेंस की तैयारी की, अब उस एंट्रेंस की तैयारी के लिए भी बच्चे रेडी हैं, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं, इनको एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रांग है, और सेल्फ लर्न, अब ये मतलब पढ़ने वाले बच्चे तो हैं ही, क्योंकि इंटरेस्ट स्टडीज में अपने आप बिल्ड हो गया। एक बच्चे का इंटरेस्ट तभी नहीं बनता है जब उसकी उसको समझ नहीं आता, जहाँ जहाँ नहीं समझ आया वहाँ आपने साथ साथ उसकी हेल्प कर दी, उसका जो गैप बनना था टीचर के साथ वो बन ही नहीं पाया, गैप पूरा ब्रिज हो गया, तो टीचर और स्टूडेंट एक लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हर कंपटीशन को वो बच्चा क्रैक कर जाएगा। ठीक है ना। आपके पास भी रिजल्ट दिखाने के लिए होंगे कि जी मेरा ये रहा, और जो भी सब्जेक्टिव चाहे ऑब्जेक्टिव कोई भी पेपर है, सबके आंसर जो हैं वो उनके आईडी में आ रहे हैं बच्चे के। ठीक है ना। तो आपको, हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ जी, सब्जेक्टिव भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं, वर्कशीट्स भी हैं, ट्यूटोरियल्स हैं। जैसे मतलब जरूरी नहीं है कि पूरे चैप्टर का सब्जेक्टिव पेपर लेना है, आप दो कुछ पार्ट्स में भी ले सकते हो।
आप मुझे एक 9th क्लास के फिजिक्स के किसी भी चैप्टर का,
हाँ वो तो मैं भेज दूंगी, पर मैम मैं ये चाहूंगी कि आप 10 मिनट्स का टाइम दो, मैं गूगल मीट पे लाके आपको अपना फ्रेमवर्क ही दिखा दूँ। वो तो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप दिन में कभी भी देख सकते हो।
वो मैं टीम के साथ,
नहीं 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 आप सुनिए मेरी बात, उस पे सारे सैंपल पड़े हैं, ऑब्जेक्टिव के भी सैंपल पड़े हैं, सब्जेक्टिव के भी, मैं बता दूंगी कि यहाँ से आप कोई भी देख सकते हो। तो नॉट ओनली कि आप फिजिक्स का देखो, आप सारे सैंपल देख सकोगे। इसलिए मैं चाहती थी कि 10-15 मिनट्स का अगर आप टाइम दो तो मैं गूगल मीट पे लाके आपको एक बार अपनी वेबसाइट सारी दिखा दूंगी, और मैं लिंक्स भी भेज दूंगी, उसके बाद आप उस वेबसाइट को कभी भी व्यू कर सकते हो। और हाँ जी, ठीक है ठीक है, हाँ कोई इशू नहीं है, कल
पहले मैं अपनी टीम के साथ ये पॉइंट डिस्कस करती हूँ, बिकॉज एक्चुअली ये जो भी आपने अपना फ्रेमवर्क बताया है, इन सब पे वी आर वर्किंग, हमारा ऑलरेडी अपना एक ऐप है, सब कुछ है, सो हम लोग कर रहे हैं।
मैम आप तो कर ही रहे हो एक ऐप पे वर्क, लेकिन एक एक पर्सन अगर मतलब एक टीम वर्क कर रही हो और एक इंडिविजुअल कर रहा हो, उन दोनों में बहुत फर्क होता है। और जो यहाँ पे आपके परफॉर्मर्स दिखेंगे, आपको पता चलेगा कि हमारा जो लेवल है एग्जामिनेशन का वो भी बहुत अच्छा हमने बनाया है, जिससे कि बच्चों में एक्चुअली उनकी चेकिंग हो जाए, कहीं आई वॉश नहीं है कि हमने सिंपल पेपर बना लिया, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छे से प्लान पेपर बने हुए हैं और ये सॉफ्टवेयर बना रहा है और हर बार आपको न्यू मिलेंगे। अभी क्या होता है, हमने पेपर बना लिया, हर साल तो नहीं ना हम हर क्लास के हर चैप्टर के नए पेपर बनाएंगे, फिर इसमें हमारे पास SLTs भी हमने बनाए हुए हैं जिसको कि हम हाफ लेंथ टेस्ट कहते हैं, वो दो तीन चैप्टर्स को मिक्स करके बनाया जाता है, जैसे रिवीजन के टाइम पे हम चाहते हैं कि 1.5 आवर का पेपर हो सब्जेक्टिव, उसमें दो तीन चैप्टर्स मिक्स कर दिए। फिर हमारे यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी है कि पूरे 3 घंटे का ही पेपर बन जाएगा, जो चैप्टर्स आपके पेपर में आने हैं वो चैप्टर्स को मिक्स करके एक पेपर बन जाएगा, जिसके बेस पे आप पूरे, मतलब आपका पेपर, बच्चा स्कूल में पेपर देने से पहले 2-3 HLT जब FLTs दे के जाएगा तो सोचो वो कितना रेडी होगा फाइनल के लिए। और अगर ये सारा काम आप इंडिविजुअली करना चाहोगे तो ये हो ही नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग हो जाएगी, चाहे किसी मैथ्स के चैप्टर में हो गई, कहीं फिजिक्स में हो गई, कहीं साइंस में हो गई, तो कहीं कुछ ना इशू तो रहेगा। अब ये चीज़ जब कोई और आपके लिए करके देगा तो ऑब्वियसली इसके रिजल्ट्स बहुत बेटर होंगे, क्योंकि देखो दोनों चीज़ें पैरेलली नहीं हो सकती कि आप टीचिंग भी कर रहे हो, आप ऐप पे भी क्वेश्चंस डाल रहे हो, उसकी भी पूरी मैनेजमेंट कर रहे हो, दैट इज़ रियली टफ, तो वो नहीं हो पाता है कभी भी, एक तरफ ही जस्टिस होगा ना, दोनों तरफ तो जस्टिस हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए जैसे आप तो इस फील्ड में हैं ही, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप हमें टाइम दें तो, चाहे जैसे संडे को हमने आना ही है चंडीगढ़, अगर आप टाइम देंगे तो हम 10-15 मिनट्स के लिए आपके ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी और को मिलने तो जाना ही है। ठीक है ठीक है, मुझे मतलब मैं चाहूंगी कि आप, मैम ये तो आप पहले एक बार फीचर्स तो देखिए, कॉस्ट तो इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है आप
बताओ ना, हाँ, मैं हाँ, तो
हाँ इसमें ऐसे होता है मैम, ये पर आईडी मॉडल पे है, इसमें कोई भी आपको इनिशियल पेमेंट नहीं करनी है, जितने आईडीज आप स्टूडेंट के बनवाओगे तो पर आईडी मॉडल पे है, और इसमें 100 रुपीज पर स्टूडेंट पर मंथ इसके चार्जेस होते हैं। तो इसमें मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश सब कुछ अवेलेबल, इंग्लिश ग्रामर अवेलेबल है, और ये सारे वर्क, मतलब और इसके साथ, मतलब देखो आपने तो बच्चों के लिए आईडीज लेने हैं, उसमें पेरेंट आईडी भी मिल रहा है आपको, आपका अपने आईडीज भी बन रहे हैं, आपके स्टाफ के आईडीज भी बन रहे हैं, स्टाफ की अटेंडेंस, स्टाफ की मैनेजमेंट, स्टाफ का रिपोर्ट कार्ड कि किसने कितनी कॉलिंग की, इंक्वायरी की, क्या हुआ, एब्सेंटीज को कॉल हुआ नहीं हुआ, नॉट पर सब्जेक्ट, पर स्टूडेंट पर मंथ, सब्जेक्ट के सारे अवेलेबल हैं और सारे ही मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं आपको, ये नहीं कि हम कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल दे रहे हैं, सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए मुझे जस्ट 10 मिनट्स का टाइम आप दोगे तो मैं गूगल मीट पे, आप अपनी जो टीम होगी उनको भी साथ बिठाना, सबको एक साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर आप डिसाइड कर लेना, वो शायद डिसीजन लेना ज़्यादा बेटर होगा।
ठीक है
तो मैं कब कॉन्टेक्ट करूँ आपको?
मुझे आज है फ्राइडे, राइट, सो सैटरडे तो मेरे पास सीन नहीं होगी, हम मंडे को बात करते हैं, है ना? मंडे को मैं डिस्कस करूंगी अपनी टीम के साथ,
ठीक है,
तो उसके एक दिन बाद ही मैं आपको अपडेट कर पाऊंगी।
ठीक है, तो मैं ट्यूसडे आपको हम कॉल करूँगी, ठीक है मैम?
ठीक है,
ओके, थैंक यू सो मच।